फिर पूरन सा राज कनारा जाला हार पुकारा। आजादी का वीर सिपाही कभी नहीं मत हारा। फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया। सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला। 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला।
वैसे तो 20 का दशक आते आते गांधी पूरे भारत में मशहूर हो चुके थे, लेकिन दांडी यात्रा के अनोखेपन या कहें अलग अंदाज ने उन्हें पूरी दुनिया की आंखों में चढ़ा दिया। अंग्रेज सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए कर को गांधी ने दुनिया का सबसे अमानवीय कर करार दिया। उस समय भारत में एक मन यानी 38 किलो नमक की कीमत 10 पैसे हुआ करती थी। उस पर सरकार ने 20 आने यानी 2400% का कर लगाया। गांधी ने 241 किलोमीटर दूर दांडी जाकर नमक कानून तोड़ने का फैसला किया और अपने साथ जाने के लिए 79 कार्यकर्ताओं का चयन किया। गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक प्रमोद कपूर बताते हैं।
78 मार्चर्स थे जिसको गांधी जी ने एक एक का इंटरव्यू लिया था और खुद सेलेक्ट किया था। यंगेस्ट था कोई 16 साल का और गांधी जी ओल्डेस्ट थे। इन्होंने सबको अपने भाषण में जाने के पहले कहा था कि ये तैयार रहना कि जितने जा रहे हो उतने वापस नहीं आएंगे यहाँ पर। तो एक तो उसमें उन्होंने 79th मार्चर जो है वो खड़क बहादुर सिंह को लिया जो कि एक मर्डरर था। लोगों ने मना भी किया गांधी जी को, तो जब लेकिन गांधी जी ने जब पूरी बात सुनी उसकी कि किस कारण से उसने ये खून किया था और तो उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया उन्होंने और वो 79th मार्चर बना। लेकिन उससे ज़्यादा एक जो बात मैं मुझे ज़्यादा दिल में लगी वो थी कस्तूरबा का रोल। उनकी बेटे की उन्हीं दिनों साउथ अफ्रीका से आए थे वो लोग, तो मनीलाल जा रहे थे सत्याग्रह में एज अ मार्चर। तो उनकी वाइफ जो थी उन्होंने जब उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल रोने लगी। ये इतना इमोशनल सा कुछ वहाँ हो गया कि बा ने कंट्रोल लेना शुरू किया। उन्होंने एक रोली ली और उसमें घी डाला और सबसे पहले तो गांधी जी को लगाया और जितने भी 78 मार्चर से सबके सिर पर तिलक लगाया और ये कहा कि तुम सब हमारे बच्चे हो, खाली यही हमारा बच्चा नहीं है। और तीसरा तो आप हम सबको पता है कि कैसे धरसाना में वो पिटाई हुई थी बेचारों की सबकी और गांधी जी ने कहा था कोई हाथ नहीं उठाएगा और चुपचाप एक कतार में जा रहे थे, एक एक कतार में मारा गया।
इस यात्रा में गांधी जी के लिए एक घोड़े का भी इंतजाम किया गया था लेकिन वो उस पर कभी नहीं बैठे। गांधी ने कहा उनके लिए दिन में 24 किलोमीटर चलना वो भी बिना किसी सामान के बच्चों का खेल है। इस यात्रा के दौरान गांधी के पैरों में छाले पड़ गए लेकिन उन्होंने चलने के लिए पालकी या घोड़े का सहारा नहीं लिया। यूं तो गांधी ने 1906 में जब वो 37 साल के थे ब्रह्मचर्य अपना लिया था, लेकिन उसके बाद एक मौका आया था जब वो थोड़ा डगमगाए थे और रवींद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी के लिए उनके मन में कोमल भावनाएं पैदा हो गई थी।
इन्होंने मार्गरेट सैंगर जो कि एक एक्टिविस्ट थी न्यूयॉर्क में, बर्थ कंट्रोल की एक्टिविस्ट थी, उन्होंने इनका एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में इन्होंने बड़े 2 दिन का इंटरव्यू था, पूरा दिल खोल के बात की और इनफैक्ट इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ उनको कि वो बीमार पड़ गए, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था गांधी जी को बॉम्बे में। उस इंटरव्यू में इन्होंने एक चीज़ कही कि जब वो 50 साल के थे तो ही सेड ही नियरली स्लिप्ड एंड डिस्ट्रॉयड हिज मैरिज। और मैंने इसमें बड़े डिटेल में आउटलुक मैगजीन में लिखा था कि ये वो थी सरला देवी चौधरानी। अब जो लिखा गया है वो हम पढ़ रहे हैं, अब ये कोई ये, लेकिन जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है और जिस तरह का एक्सचेंज ऑफ लेटर है उससे लगता है कि बड़ा पास तक आ गए थे ये। अब ये पता नहीं कि वेदर ही स्लेप्ट विद हर और नॉट, आई कांट से।
मैंने महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी से संपर्क कर पूछा कि गांधी जी और सरला देवी के बारे में कही गई इन बातों के बारे में कितनी सच्चाई है।
सरला देवी बंगाल की थी लेकिन उनकी शादी लाहौर में हुई थी पंजाब में, और वो एक कवि भी थी, वो कविताएं लिखती थी और वो भाषण अच्छा तेजी से देती थी और चरखा को उन्होंने अपनाया, खादी को उन्होंने अपनाया। उनके कई ऐसे गुण थे जिससे भी गांधी जी बहुत ही इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने स्नेह दिया गांधी जी को, तो ऐसा था ना कि गांधी जी तो सबको अपना स्नेह देते थे, उनको स्नेह देने वाले इतने लोग नहीं थे। तो उनमें से एक थी ये सरला जी, तो सरला जी के साथ गांधी जी का बहुत निकट का रिश्ता हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने लगा कि ये रिश्ता अगर बहुत जारी रखा जाए तो इससे और तकलीफें हो सकती हैं, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का तो प्रण ले ही लिया था और उनकी पत्नी तो थी कस्तूरबा, तो कैसे एक निकट का रिश्ता ये चलाया जाए ये एक बड़ा सवाल था। तो फिर उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया कुछ महीने बाद, 5-6 महीने तक वो रिश्ता चला, उसके बाद उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया।
कस्तूरबा को इसकी जानकारी थी वो इस रिश्ते
के बारे में? अब जानकारी कब मिली, बाद में तो जरूर थी क्योंकि गांधी जी ने तो उसके बारे में लिखा और पब्लिकली भी बात की, और गांधी जी के पुत्र जो थे मेरे पिताजी उनको भी अच्छी जानकारी थी, महादेव देसाई को जानकारी थी, मेरे नाना राजा जी को जानकारी थी, उस समय वो गांधी जी के समझे नहीं बने थे लेकिन गांधी जी के बहुत ही निकट थे, इन सबको जानकारी थी। और वो आश्रम में आकर भी रही थी कस्तूरबा के, जब कस्तूरबा भी वहां थी, और वो तो स्पष्ट था कि वो गांधी जी और सरला देवी के बीच में बहुत ही अच्छी दोस्ती का रिश्ता था, ये तो कस्तूरबा को अच्छी तरह से मालूम था।
इस सब के बावजूद प्रोफेसर पुष्पेश पंत कहते हैं कि प्रमोद कपूर ने गांधी के बारे में सनसनी फैलाने वाले तथ्यों को ज्यादा महत्व नहीं दिया है।
जो सेंसेशनल चीजें थी उसको उन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गांधी के प्रयोग ब्रह्मचर्य के साथ थे उनकी बात तो बरसों से हो रही है, जो गांधी के रिश्ते एक समलैंगिक प्रेम के कटनबाख के संग थे उसका भी जिक्र दबी जुबान में लोगों ने किया है। तो गांधी ट्रूथ एरिक एरिक्सन से लेके उनके एक्सपेरिमेंट्स ब्रह्मचर्य से लेके, अब मजे की बात है कि गांधी की ऑटोबायोग्राफीज तो 30s के पहले छप चुकी थी और उसके बाद गांधी जी ने कहा मेरी जिंदगी मेरा संदेश है, और उसके बाद इस कदर गांधी पे लिखा गया है और इस कदर गांधी को फोटोग्राफ किया गया है कि वो मार्गरेट बुर्क व्हाइट हो या कोई और हो, तो वो दस्तावेजी गांधी, और एक पीढ़ी को तो गांधी सिर्फ अटनबरो ही समझ में आता है। अब इसके बाद आप देखिए तो लोग हैं जिन्होंने गांधी बिफोर इंडिया भी लिखा है राम गुहा ने, और इंडिया आफ्टर गांधी भी लिखा है, तो वो जो चुस्त जुमलेबाजी सिर्फ बेचारे बीजेपी वाले इलेक्शन में ही नहीं करते, गांधीयन स्कॉलर भी करते हैं। तो वो जो कहानी है कि हिंदुस्तान में गांधी बापू हैं, ज़रा उनकी शान के खिलाफ कुछ कह दीजिए जैसा बेचारी कबीर बेदी की बेटी ने कहा तो आप लाइन हाजिर हो जाते हैं, तो एक तरह से गांधी होलिकाओं भी हैं, एक तरह से गांधी एक ऐसा भगवान है जिसके मंदिर पे पूजा पाठ आप कर लीजिए मगर जिंदगी से आपका वास्ता उस आदमी से कोई नहीं है। बापू की समाधि पे आदमी हर मिजाज का अनशन भी करेगा, फोटो ऑप भी करवाएगा, मगर कुल मिला के गांधी की रिलेवेंस इस देश में इस वक्त क्या है ये सोचने को ये किताब मजबूर इसलिए करती है। आप पन्ने पलटें, आप न पढ़ें, कोई एक तस्वीर होगी जिस पर आपकी आंखें अटक जाएंगी, कोई चार अल्फाज होंगे जो आपको सोचने को मजबूर करेंगे कि ये शायद मुझसे छूट गया था, और ये मुझे फिर आपको मजबूर करेगा अगला सफा पलटने के लिए।
प्रमोद कपूर एक किस्सा और बताते हैं। जब 1916 में महात्मा गांधी बनारस गए और उन्होंने हिंदू कॉलेज में दिए अपने भाषण में वहां मौजूद राजा महाराजाओं को आड़े हाथों लेना शुरू किया, सारे महाराजा वहां से वॉकआउट कर गए। एनी बेसेंट ने गांधी से अपना भाषण रोकने के लिए कहा और मदन मोहन मालवीय महाराजाओं को मनाने उनके पीछे दौड़े।
7 दिन का फंक्शन था, इसमें दूसरे दिन बुलाया गया गांधी जी को। गांधी जी पहले तो काशी विश्वनाथ मंदिर वगैरह के चारों तरफ देख गए, बड़ी गंदगी दिखाई दी बनारस में उनको और सिक्योरिटी बहुत थी, तो उनको जब मौका दिया बोलने का तो उन्होंने पहली बात तो कही गंदगी की बात बताई कि भाई बनारस में क्यों लोग साफ़ नहीं रखते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि ये महाराजा लोग बैठे हैं यहाँ पर और ये जवाहरात और इस सब से लदे हुए हैं, एक गरीब देश में ये शोभा नहीं देता कि आज यूनिवर्सिटी खुल रही है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें इस तरह से ये आए हैं। और ये बोलते रहे करीब 15-20 मिनट तक, तब एनी बेसेंट उठी और उन्होंने कहा स्टॉप मिस्टर गांधी, स्टॉप नाउ। तो देखा कि धीरे धीरे जितने महाराजा थे एक एक उठ के सब जाने लगे। मालवीय जी उनके पीछे भागे कि नहीं नहीं महाराज बुला दी, आइए वापस, इनको चुप करा दिया गया है, आप आ जाइए वापस, लेकिन तब तक भंग हो गई थी सभा इनकी।
प्रमोद कपूर की किताब का सबसे मार्मिक पक्ष है वो गांधी और उनके सबसे बड़े बेटे हरिलाल के संबंधों का जिक्र करते हैं। हरिलाल अपने पिता से नाराज थे इसलिए उन्होंने उनका घर छोड़ दिया था। एक बार उन्हें पता चला कि गांधी और कस्तूरबा की ट्रेन मध्य प्रदेश के कटनी स्टेशन से गुजरने वाली है, वो वहां पहुंच गए। वहां हर कोई महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रहा था, उन्होंने कस्तूरबा गांधी की जय का नारा लगाया। तब सबकी निगाहें उनके ऊपर गई।
इनको पता लगा हरी लाल को कि कटनी जंक्शन से गांधी जी और कस्तूरबा पास कर रहे हो, तो ये बुरी कंडीशन में थे, जरूर मतलब ड्रंक थे, और उन्होंने वहाँ नारे लगाना शुरू किया, कस्तूरबा माँ की जय, कस्तूरबा माँ की जय। तो लोगों ने देखा कि ये कौन आदमी है भाई, कि ये सब लोग तो महात्मा गांधी की जय कर रहे हैं, एक को पीछे से चिल्ला रहा है। तो इन्होंने देखा अपने कंपार्टमेंट से कि हरी लाल था वहाँ पर, तो उसको बुलाया गया, वहाँ गए ये। और तब तक ट्रेन चलने लगी तो संतरा जो है उन्होंने अपनी माँ को दिया और कहा कि ये इसको खाने मत देना, इसको मत खाने देना, आप खाना, आप खाना।
पुष्पेश पंत कहते हैं कि गांधी की लाख अच्छाइयों के बावजूद उनमें खुद के सही होने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी, और उसे उन्हें दूसरों पर थोपने में कोई संकोच नहीं होता था।
हम में से हर आदमी कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमारे सारे रिश्ते उलझे हुए होते हैं। तो गांधी जी सुलझे हुए तो नहीं थे, वो अपनी जिंदगी बड़ी सुलझी बताते थे, मगर जो कहते हैं ना कि टू सिंप्लीफाई योर लाइफ इज द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लिकेशन, और जो सरोजिनी नायडू का जुमला है कि बापू आपकी गरीबी बड़ी खर्चीली चीज़ है, उसको मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें हम 10 बार सुन चुके हैं, चुटकुले, उनके 3 मंदिर, उनकी घड़ी, उनके खड़ाऊँ, उनका अंबर चरखा, हे राम, गोडसे की गोली, मगर कुल मिलाकर इसमें आपको गांधी एक आदमी, गांधी एक बाप, गांधी एक पति, गांधी एक दोस्त, और गांधी जो ऑलमोस्ट खुद को पैगंबर समझता है कि उसने जो रास्ता सूझा वो बदल दिया, वो इल्हाम उसको हुआ, बाकी लोग अब फॉलो करें ना करें वो उनके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल का भी तेवर उसमें नजर आता है।
हर कोई गांधी के नेहरू से नजदीक होने की बात करता है, लेकिन प्रमोद कपूर का मानना है कि गांधी पटेल से भी उतने ही नजदीक थे, अगर ज्यादा नहीं।
मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पटेल से सबसे ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि एक तो वो गुजराती थे, आपस में एक दूसरे को समझते थे। 3 साल इन्होंने काटा आगा खान पैलेस में, जेल में, और पटेल साहब जो है रोज इनके लिए दातून बनाते थे, और जब बना के देते थे तो लोगों कहते थे कि 2 तो दांत बचे हैं, और 2 घंटे तक ही अपना दांत इस 2 दातून से करते हैं, और मुझसे हर रोज नई बनवाते हैं। और गांधी जी कहते थे, उनकी आदत थी कि अपने पेपर को रीयूज करते थे गांधी, मतलब वेस्ट नहीं करते थे। तो कहते हैं कि भाई जब भी मैं पेपर देता हूँ सबसे अच्छा एनवलप जो है वो पटेल बनाते हैं, और वो इतना लकी है कि उसके अंदर जो भी चिट्ठी जाती है वो सेंसर से पास हो जाती है, वो रुकती नहीं है।
महात्मा गांधी की हत्या से 2 दिन पहले इंदिरा गांधी अपने 4 साल के बेटे राजीव गांधी और अपनी बुआ कृष्णा हटी सिंह के साथ उनसे मिलने बिरला हाउस गई थी।
जब इन्होंने देखा इन लेडीज को आते हुए, कहा कि प्रिंसेस आई हैं हमसे तो मिलने, तो उधर ये छोटे राजीव जो थे इन्होंने फूल जो है उनकी अंगूठों में और पैर में लगाना शुरू किया, पैर की उंगलियों में, तो उन्होंने उसका कान खींचा और कहा कि पता है कि ये सब काम किया जाता है, हम खाली मरे हुए लोगों पर लगाया जाता है, ये हम एक जिंदा आदमी पर नहीं लगाया जाता है। फोटोग्राफर 2 मिलने आए थे, एक दिन आई थी वो मार्गरेट बॉकवाइट, दूसरे दिन आए थे हेनरी कार्टियर-ब्रेसों, और दोनों से यही अपनी डेथ की बात करते थे। तो उनको कुछ एक क्या कहें, वो फिनोमिनेशन उनको हो गया था कि अब रहेंगे नहीं वो।
जब गांधी की शव यात्रा का इंतजाम किया जा रहा था तो बदहवास और किसी दूसरी दुनिया में खोए नेहरू ने माउंटबेटन से कहा था, चलिए बापू से ही पूछिए क्या कुछ किया जाना है। गांधी के शव के सामने उनकी भतीजी मनु उनका प्रिय भजन गा रही थी, तभी नेहरू उनके पास आकर बोले, और जोर से गाओ, क्या पता बापू जाग जाए।
वैष्णव जन तो तेरे रे कहिए जे, पीर पराई जाने रे, पर दुख उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे।
नेहरू जी बिल्कुल ही अपने आप को खो दिया था, उन्होंने विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ होगा। जब वो भजन चल रहा था तो उन्होंने कहा कि जरा तेजी से गाओ, क्या पता बापू उठ जाए।
31 जनवरी 1948 को जब गांधी की चिता को उनके बेटे देवदास गांधी ने आग दी, तो उसका आंखों देखा हाल सुना रहे मेलविल डिमेलो का गला रुंध गया। बाद में उन्होंने लिखा,
मैं कमेंट्री समाप्त हो जाने के बाद भी उस वैन की छत पर बैठा रहा जहां से मैं कमेंट्री कर रहा था। अचानक मुझे नीचे से वैन के हुड को पकड़ने की कोशिश करते 2 हाथ दिखाई दिए। मैंने गौर से देखा तो वो पंडित नेहरू थे। मैंने उनके हाथों को पकड़कर वैन की छत पर खींच लिया। उन्होंने छूटते ही कहा, तुमने गवर्नर जनरल को देखा है? मैंने जवाब दिया, वो तो आधे घंटे पहले गए। उनका दूसरा सवाल था, सरदार पटेल दिखाई दिए? मैंने कहा, वो भी कुछ मिनटों पहले जा चुके हैं। मैंने महसूस किया कि दुख की इस घड़ी में दोस्त दोस्तों से बिछड़ गए थे।
जिसने यही बताया जब तक हो जग में, सब मिलजुल कर रहो, प्रेम के साथ रहो। अब भी सच है जो गांधी ने वचन कहे, अमर रहे गांधी की।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।